संतप्त मान से शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धन। उपदेश से है सिद्ध, देवों के नहीं है स्वभाव सुख। 71वीं गाथा कल पढ़ी थी अपन ने गाथा का अर्थ, अब उसका टीका का अर्थ पढ़ना है। तन वेदना से दुखी वे रमणी के विषयों में रमे। उपदेश से है सिद्ध, शास्त्रों में ये बात हमने पढ़ी है, इससे ये बात सिद्ध है। देवों को हमने देखा तो है नहीं, हमने शास्त्रों में ही पढ़ी है ना कि उनको कैसे कैसे सुख होते हैं, उनका शरीर कैसा कैसा होता है, कैसे कैसे विषय भोग उन्हें प्राप्त होते हैं। तो ये उपदेश से है सिद्ध है। माने अभी हम उदाहरण दें कि देवों के ऐसा है, तो हम एक मिनट में कह सकते हैं किसने देखा, और अपन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अपन दिन ना रात इसमें बसे हैं, दिन ना रात हम चतुर्गति की बात करते हैं, चार गतियां होती हैं, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई देव गति है, ये कोई नई बात है। जो आदमी ने मान लो जैन धर्म की ये बातें नहीं जानी है कि नीचे नरक है, ऊपर देव गति है, नरकों में ऐसे ऐसे दुख है, देव गति में ऐसा है, निबोध है, तो उसके कहो कि ऐसी ऐसी सुख सुविधा है कहीं, यह सब कहने की बातें हैं, कहां है बताओ, हमें तो कोई के पास ऐसा नहीं दिखता है। कह सकते हैं ना, एक गांव में जो आदमी रहता है और वो गांव से अभी निकला ही नहीं है, ऐसे हजारों लोग अभी हिंदुस्तान में हैं कि जिनने ट्रेन नहीं देखी, ट्रेन में नहीं बैठे, छोटे छोटे गांव हैं, सभी गांव एक से ही हैं, झोंपड़े ही झोंपड़े हैं, एक भी पक्का मकान वहां नहीं है। हम आप बंबई की ऐसे 50-50, 100-100 मंजिल मकानों की बातें करें, है? वो एक एक फ्लैट का में कितना सजावट का और कैसा है और कितने आरामदायक बनाए हैं, है? तो उनको कैसी कल्पना कैसी बातें लगती हैं, ऐसा क्या हो सकता है? उन्हें तो उन्हीं में जो अच्छे बुरे हैं वो उतने जानते हैं। इसलिए जो उन्होंने इसमें लिखा कि उपदेश से है ये बात सिद्ध। अब वो उपदेश हमारे अंदर इतनी गहराई से घुस गया है कि हमको बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि जे हमने कोई शास्त्र में पढ़ी है और उसकी वजह से ये जानते हैं। ये काय का परिणाम है मालूम, कि हम जब से पैदा हुए, जब से हमारे माँ बाप भी चार गतियों की बात करते हैं, देवों की बात करते हैं, मनुष्यों की, त्रिंजों की बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं, नारकियों की बात करते हैं, तो हमको ऐसा लगता ही नहीं। ऐसे ये समय सारे में जो आत्मा अनादि अनंत लिखा है, ऐसे लाखों जीव ऐसे हैं जो कहते कहते किसने जाने का अनादि से है कि नहीं, अनंत है, लेकिन हमें लोगों को नहीं लगता, हमें तो ऐसा लगता है ये मेरे को सच्ची बात है, ऐसे मर के वहां से वहां चला गया, वहां से वहां चला गया। ये हमने दो वर्ष की उम्र से ऐसी कहानियां सुनी है। तो समय सार आत्मा जो अनादि अनंत है वो हमारे खून में मिल गया है। क्या 24 तीर्थंकर होते हैं, ये सब बातें अभी जो जैनेतर हैं, हिंदू मुसलमान हैं, उनके लिए बिल्कुल अटपटी बातें हैं, बिल्कुल नई बातें हैं, है? उनसे कहोगे नहीं किसने देखा, कहां ने लिखी, जिसकी लिखी थी काय की प्रमाणिकता सही है, हैं? उनको समझ में नहीं आता कि भगवान ने दिव्य ध्वनि में ये बातें कही थी, उसके आधार पर ये बात लिखी है। अब ये सब बातें ऐसी हैं कि जिनके सिद्ध करना पसीना छूटे ऐसी हैं और हमारे खून में मिल गई। शांति जी आज अपन देख रहे थे ना दोपहरी में परमात्मा प्रकाश, तो उसी में भूमिका पड़ रहा था, तो जिनने भी लिखी है वो भी बहुत जैन दर्शन, वही अच्छे बड़े विद्वानों में उनका नाम होगा, शायद ये उपाधि की है वो किसी की होगी है, कैलाश सिंह जी की है, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो उसने ऐसा लिखा था, बौद्धों के मानते, सांख्यों के मानते, फलाने के मानते, तो उसमें सब के प्रति इस तरह से भाव व्यक्त कर रहे थे सभी एक से हैं, ये सत्य है तो वो भी सत्य है, वो ऐसा। और क्या क्या लिखा था मालूम, जो मेरे को बहुत अंदर से तकलीफ हुई के ये जो पंडित है ना कभी क्या नाम जो हिंदू, ये ऐसे उदार हृदय हैं कि इनने इस तरह से लिखा है कि जैन और अजैन अध्यात्मी है ना उनको भी वो बात अच्छी लगेगी। उन्होंने जैसे जिन जैसे बुद्ध जैसे शिव जैसे शंकर सब में अध्यात्मी की मोटी मोटी बातें तो एक सी ही हैं, तो उन्हें वो जो ऐसी बातें हैं जैसे अपन कहते हैं ऋषि दामन से दामन में जो ज्यादा अंतर है वो हम बातें ही नहीं करते हैं, ऐसा कह रहे थे। तो जैन धर्म को उन सबके साथ तुलना करके बराबरी का दर्जा दे रहे थे, और वो बराबरी का दर्जा दिए इसके लिए उन्हें महान आध्यात्मिक माना रहे थे, तो मुझे रख दिए नहीं देखना। तो मैं सोचता हूं कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमको ये कहां से आ गया, हमारे विद्यार्थियों में कहां से आ गया, ये अपने निरंतर के अभ्यास का ये परिणाम है। उनने ऐसा निरंतर अभ्यास नहीं किया, वो बीच बीच में वो भी किया, यहां भी आज वो उपदेश दिया था सबको, हमारे पंडित जी विद्वान तैयार हो रहा है ना तुम लोग, इन लोगों में एक कमी है कि इनको थोड़ा थोड़ा अन्य मत का भी ज्ञान होना चाहिए, अन्य मत का भी इन्हें जानना चाहिए, ये उनको बड़ी कमी लगती थी। अब मतलब थोड़ा थोड़ा ये अमृत ही अमृत क्यों खा रहे, थोड़ा उसमें जहर भी मिलाना चाहिए क्या 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 चाहना चाहिए क्या ऐसा ऐसा कह रहे हैं। क्यों कभी अपन को ऐसे विद्वानों के बीच में बैठने का मौका आ सकता है, बोलने का मौका पड़ सकता है, तो तब कम अब कभी होएगा ऐसा, कोई एक आध दिन जिंदगी में आएगा, उसके लिए हम अपना इतना सारा समय शक्ति उसमें खर्च करें, ख्याल में आई ना, और फिर उसे तैयार रखें बोलने लायक की पोजीशन में, और आए और नहीं आए वो एक दिन ऐसा, तो क्या करना है हमें उस दिन का, वो दिन की हमें जरूरत क्या है, हमारे पास तो 25 आते हैं, मैं तो देखता ही नहीं हूं, जाने की बात तो बहुत दूर, वहां इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है, वहां ये सेमिनार हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां ये रहा, आने जाने का फर्स्ट क्लास का किराया देंगे, प्लेन का किराया देंगे। और वो परसों आए थे वो सब कह रहे थे, फिर कार्ड वार्ड भी आगे वे सब दे दुआ के गए हैं कि आप आ जाना और हम आपकी सब सेवा करेंगे, ये करेंगे, क्या करना हमको वहां आकर के, सुबह से शाम तक वही वही लोग बोलेंगे और हम वहां जाएंगे वो बैठ के सुनना पड़ेगा, यहां हम एक घंटा बैठने में तो तकलीफ होती है, और वहां जाके दो दो चार घंटा बैठा अभी वैसी बातें सुनते रहो, क्या करना है मेरा 80 वर्ष की उम्र में उसका, उन बातों को हमें नहीं चाहिए, इसे हम तो नहीं जाएंगे। तो हमको अंदाजा नहीं है कि हमको ये जो उपलब्धि है कि ये क्यों लिखी कि उपदेश से बात सिद्ध है, हमें सिद्ध तो हमारे लिए तो सिद्ध ही था कि देव हैं और उन्हें इस टाइप का जो सुख होता है ऐसा हमारे लिए तो प्रसिद्ध है। तो उपदेश से है सिद्ध, क्या सिद्ध है कि देवों के नहीं है स्वभाव सुख, कि उन देवों के जो सुख का वर्णन शास्त्र में पढ़ा था तुमने, तो वो भी उन्हें वो आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न हुआ वो सुख नहीं है, वो 5 इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुआ सुख है, क्या ये स्वभाव सुख नहीं है माने क्या। और वो 5 इंद्रियों के विषयों में इसने ऐसा लिखा है कि 5 इंद्रियों के विषय सब मौजूद हों और 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने की क्षमता शक्ति हम में नहीं हो, بڑھیا سے بڑھیا مال مسالہ رکھا ہے کھانے پینے کو, اور ہم کو لوکھا کھسوکھا کھانا بھی نہیں پچتا ہے. کیوں؟ وہ کھیر پوڑی ہم کھا ہی نہیں سکتے ہیں, تو وہ اتنے اس کی اپلبدھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ایک ایک اندری پہ گھٹت کرو. پانچ منٹ دیکھتے ہیں تو آنکھ میں درد ہونے لگتا ہے. اب بڑھیا سے بڑھیا کتنا ہی درست ہوں, ہم کیا کریں گے؟ اتنی دیر سن نہیں سکتے, اتنی دیر دیکھ نہیں سکتے. اندریوں کے پانچ اسپیشل اندری کے وشے بڑھیا سے بڑھیا ودیمان ہیں اور ہم میں اس کی شکتی نہیں ہے, تو وہ ان کا کیا شوق ہے؟ یعنی وہ اندریاں یہ وشے بھوگوں کے سکھ اندریوں کی بلبتا کی اپیکشا رکھتے ہیں. کیا یا آئے گا اس میں دیو دیووں کی حالت کیا بتائی نے؟ بھرگو پرپات. بھرگو پرپات کا اس کا یہ ارتھ لکھا ہے, بھرگو مانے پربت کا نرادھار اچ شکھر, اس کو بھرگو بولتے ہیں, اور اس پہ سے کوئی گرے آدمی تو جتنا تیزی سے نیچے گرتا ہے نا وہ, ایسے ہی یہ دیوتا لوگ پانچ اندریوں کی طرف اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں. ایک سیدھا سچا ارتھ یہ بھی ہے شانتی جی, بھرگو پرپات مانے جھرنا, لیکن ہر جھرنا نہیں, جو بہت اونچی پربت کی چوٹی سے گرتا ہے اور بہت نیچائی میں جا کے گرتا ہے, ایسا جھرنا دیکھے ہوں گے کئی جگہ. ناگرا میں ہے امریکہ میں, مطلب میلوں اونچوں سے گرائی سے گرتا ہے اور ایک دم نیچے تک, تو اس کا پانی کا فورس کتنا زیادہ ہوتا ہوگا, تو سفید سفید دکھتا ہے, پانی جیسا دکھتا ہی نہیں ہے, بالکل سفید ایک دم دکھتا ہے, اور چاروں طرف وہ اس کی فبارے ایسے چھوٹتے ہیں. فبارے مانے وہ دھواں جیسا نکلتا ہے نا, کیا بولتے ہیں اسے آپ, تو اس سے وہ سب جگہ اندھیرا اندھیرا جیسا دکھتا نہیں ہے اپن کو کچھ, ایسا ایسا ایریا میلوں تک ایسا ہو جاتا ہے اس سے, اس کو بولتے بھرگو پرپات. مانے وہ جتنا تیزی سے اوپر سے نیچے گرتا ہے, ایسے یہ دیو اندریوں کے وشیوں کی طرف اسی تیزی سے بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں. تو وہ کیوں بتا رہا ہے کہ کتنی تسنا ہے, وہ کتنے سکھی ہیں, کتنے جلدی پراپت کر لیتے ہیں اپنے ادیش کو. کیوں؟ وہ بات نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی تیزی سے دوڑنے کی بات ان کی اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ اندر میں کتنے دکھی ہیں. وہ اتنے کال میں جتنے کال لگانا ان کو بیچ میں اس وشے سامگری کے پاس پہنچنے میں, وہ اتنا میں کتنے دکھی وہ ہیں. دیکھو تاتپر یہ ہے کہ یدی وہ سوبھاوک سکھی ہوتے دکھی نہیں ہوتے تو رمنیک وشیوں میں رمن سمبھو نہیں تھا. رمنیک وشیوں میں رمن اس بات کا پرمان ہے کہ دیو بھی دکھی ہی ہیں. اکت گاتھا کا بھاو آچاریہ امرچند تت پردیپ کا ٹیکا میں اس پرکار اسپشٹ کرتے ہیں, اندری سکھ بھاجنوں میں دیو گتی میں کے دیو پردھان ہیں. اندری سکھ بھاجنوں میں اندری سکھ کے جو پاتر ہیں ان میں سب سے زیادہ بھوگ سامگری کی اپلبدھی اور بھوگوں کو بھوگنے کی شکتی دیووں میں موجود ہے, لیکن وستتا ان کے بھی سوبھاوک سکھ نہیں ہے. جب ان کے نہیں ہے تو باقی کا کیا کہنا, اس کے لیے کہہ رہے ہیں. اپتو ان کے سوبھاوک دکھ ہی دیکھا جاتا ہے, کیونکہ پنچیندریا وقت شریر روپی پچاس کی پیڑا سے پروس ہونے سے بھی بھرگو پرپات کے سمان منوگ وشیوں کی اور دوڑتے ہیں. یہ بات دیکھو, اپن لوگ ابھی بھی لوگوں کے دماغ میں سے کہ پانچ اندریوں کے وشیوں کی سامگری ادھک سے ادھک بڑھیا سے بڑھیا جن کے پاس اپلبدھ ہے وہ بالکل ہم کو انت سکھ جیسی لگتی ہے, وہ بہت سکھی ہیں اور اب وہ ہمیں پراپت ہو. یعنی تھوڑا بہت ہماری تشنا اس کے پرتی کم ہوئی دکھائی دیتی ہے तो वह जिनवाणी का प्रताप है और उसमें निरंतर की ये भावना का प्रताप है। लेकिन नहीं तर ऐसी तृष्णा बहुत निरंतर देखी तो उनमें सुख नहीं है, ये बात सिद्धांत के रूप में हम सुन लेते हैं और वे सुखी नहीं दुखी हैं, ये हम सिद्धांत के रूप में सुन लेते हैं, लेकिन अंदर हमारे वो जचती नहीं है, घुसती नहीं है। क्या तो उसके लिए क्या उपाय? वो निरंतर का तत्संबंधी चिंतमन जो कहते बार बार रिपीटेशन, मान उसके प्रति जो आस्था की वृद्धि भी उत्पत्ति भी तब होगी जब हमारा निरंतर भी तब बनेगा जब हमें रुचि होगी, ये बात हमको सुनने में रुचि होगी तब वो हम निरंतर कर सकेंगे ना, नहीं तो उसे हम निरंतर कर नहीं सकते हैं। देखो ये भृगु का तो अर्थ बता दिया ना, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उक्त गाथा के भाव को निम्नांकित प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। ये उदाहरण आप लोगों ने सबने पढ़ा है, देखा है, सुना है। कौन सा? कि वो ऊपर एक यहां बना है ना एक पेड़, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं कि एक दफे शांति से इसे पूरा शांति जी पढ़ लें। लो स्पीकर लो और आप ही लोग कोई पढ़ो, 10 मिनट मुझे थोड़ा सा आराम भी मिलेगा, और इसे पूरा पढ़ेंगे तो जो टीवी पे भी सुनेंगे तो कम से कम बे लोग तो सुन लें इस उदाहरण को पूरा, और सांगो पांगे मैं पढ़ूंगा तो मैं तो वैसे ही बोलता रहूंगा, मैं उसे पढ़ नहीं सकता। क्या मैं बस बोलूंगा सुना दूंगा, क्या कहानी याद है मुझे, इसलिए आप ऐसे शांति से सुनो, आपकी किताब में आप देखो भी उसे एक एक एंगल पे जो भजन दिया है वो ध्यान में आएगा। कहानी तो सबको मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ चल पढ़ो।
एक व्यक्ति अति विस्तीर्ण भयंकर वन में भ्रमित होकर अर्ध विक्षिप्त हाथी के पीछे पड़ जाने से अंधे कुएं में गिरते समय उसके किनारे पर स्थित वृक्ष की एक शाखा को पकड़कर लटक जाता है। उक्त वृक्ष की जड़ों को दो चूहे काट रहे हैं। उस वृक्ष पर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा है और उस वृक्ष को वह विक्षिप्त हाथी क्रोधित होकर झकझोर रहा है, जिसके कारण मधुमक्खियां उड़कर उक्त पुरुष को काटने लगी हैं, पर छत्ते के हिलने से उसमें से मधु अर्थात शहद की एक एक बूंद टपक रही है, जो भाग्य से शाखा से लटके उक्त पुरुष के मुख में गिर रही है, जिससे वह बड़े चाव से चाट रहा है। नीचे कुएं में विशाल अजगर पड़ा है जो उक्त व्यक्ति को निगल जाने को आतुर है, और अनेक अन्य सर्प भी उसे डसने को तैयार हैं। मृत्यु के मुख में पड़े हुए उक्त पुरुष को उक्त अनेक दुखों के बीच मात्र मधुबिंदु को चाटने के समान ही सुख है। उक्त परिस्थितियों में फंसे हुए मरणोन्मुख उक्त पुरुष पर करुणा करके कोई देवता उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है और आग्रह करता है कि तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें अभी इस महासंकट से बचा लेता हूं। परंतु वह अभागा पुरुष कहता है कि इस मधुर मधु की एक बूंद और चाटा, एक एक बूंद मधु के लोभ में तब तक वहीं लटका रहता है कि जब तक वह वृक्ष उखड़ नहीं जाता, उसकी डालियां टूट नहीं जाती, वह पुरुष गिरकर विकराल अजगर के मुख में समा नहीं जाता, सांपों द्वारा डसा नहीं जाता, यहां तक कि महामृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। मधुबिंदु के समान सांगे लोभ में यह मनुष्य संसार रूपी भयंकर वन में मिथ्यात्व रूपी कुमार्ग में भटकता हुआ मृत्यु रूपी हाथी के भय से शरीर रूपी अंधे कुएं में गिर गया है, जिसे आयु कर्म रूप वृक्ष की जड़ शुक्ल और कृष्ण पक्ष रूपी चूहे काट रहे हैं। ऐसी आयु कर्म रूपी वृक्ष की शाखा पर लटक गया है। शरीर रूपी अंधे कुएं के नीचे भाग में सशरीर निगल जाने को तैयार मिथ्यात्व रूपी अजगर और डस जाने को तैयार कषाय रूपी सर्प हैं, मृत्यु रूपी हाथी वृक्ष और उसकी शाखाओं को नष्ट करने की जोर से झकझोर रहे, जिससे जीवनांत होने का खतरा बढ़ गया है। फिर भी वह मनुष्य विषय सुख रूपी मधुबिंदु के स्वाद में सुख मानता हुआ उसे चाट रहा है, विषयों को भोग रहा है। सद्गुरु रूपी देवता उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर वह विषय सुख रूपी मधु के लोभ में फंसकर वहां से निकलना ही नहीं चाहता। सांसारिक सुख की यही स्थिति है, मोक्ष सुख इससे विलक्षण है, विपरीत है।
इस कहानी के माध्यम से उनने ये बताया है कि हमारे जो संसार का जो सुख है वो मधु की बिंदु के समान है और उसके चारों तरफ खतरे कितने हैं। 24 घंटे हमारी आयु छीण हो रही है, देह छीण हो रही है और भविष्य क्या है, जैसे नरक गति, त्रंज गति, जैसी जैसी गतियां हैं जिनमें हमारी जाने की तैयारी है, जिसकी इतनी तृष्णा है विषयों के प्रति कि वो जो बचाने वाला उसे बचाने के लिए कहता है तो अगर एक बूंद और चाट लूं, और ऐसा एक एक बूंद करते करते वो तब तक नहीं उस देवता के हाथ के पकड़ में आता है कि जब तक वो गिर नहीं जाता है, डाली टूट नहीं जाती है, वृक्ष गिर नहीं जाता है और वो उस अजगर के मुख में चला नहीं जाता है। ऐसी स्थिति इस संसारी जीव की है। ये उदाहरण आचार्य जयसेन ने अपनी टीका में बहुत विस्तार से दिया है, तो इससे हमको सिद्ध मालूम पड़ता है कि हमारी दुख की और सुख की तुलना कितनी है। फिर भी हम उसे सुख अनुभव करते हैं। ये तो उस देवगति के सुखों की बात कर रहे हैं कि जिनको कल मैंने कहा था ना, बिल्कुल स्वस्थ शरीर है, एक बीमारी नहीं है, जन्म से ही पूरे स्वस्थ तंदुरुस्त जवान पैदा हुए हैं और मरने के अंतिम समय तक बुढ़ापे तक रंज मात्र भी बुढ़ापा आने वाला नहीं है, एकदम स्वस्थ मजबूत पांचों इंद्रियों को भोगने के लायक ये शरीर रहने वाला है और पांच इंद्रियों के विषय भोग भी निरंतर रहने वाले हैं। वो वे जीव कैसे सुखी हैं उनका ये उदाहरण दिया है। अमृतचंद को तो ये भी बर्दाश्त नहीं है, इतना भी मधु की बिंदु के बराबर भी कहां है, क्यों वो जो सुख है वो भी स्वभाव सुख कहां है, वो भी स्वभाव से उत्पन्न हुआ सुख नहीं है ना। पांच विषय सामग्री वो भी पुद्गल, भोगने वाला शरीर वो भी पुद्गल का बना हुआ, और जो हमारी इच्छाएं वो भी बेकारी भाव आश्रव भाव, तो आश्रव और अजीव के ही अधीन सब कुछ है और सुख तो आत्मा की चीज है। ना आत्मा ने आत्मा की तरफ देखा है, ना आत्मा दिखाई दिया है, ना वो सुख उसमें से आया है, ना उस तक पहुंच रहा, उसे प्राप्त नहीं हो रहा। मतलब तो उन देवताओं के भी स्वभाव सुख नहीं है, तो मैं देवताओं के तुम पीछे क्यों पड़ गए। हमने आज तक जितना पंडित देखे बोले देखे वो सब नरकों का दुख बताते हैं, त्रंज गति के दुख बहुत बताए, ख्याल में आई ना, भूख के, प्यास के, गर्मी के, सर्दी के, ये बहुत दुख, इस तरह के दुख बहुत बताए हैं। और नरकों का भय दिखाकर व स्वर्गों का लोभ दिलाकर हमको से कुछ शुभ काम माने पुण्य कार्य करने की प्रेरणा देते रहे। ये एक दो की बात नहीं है, 99.9% की बात है, और सब बातों में ये ही निरंतर बातें हैं। ऐसा एक कह रहे एक दिन छुट्टी के दिन चाहे नहीं ना छुट्टी के दिन एक दिन छुट्टी कर दें शांति जी और बैठ जाओ सुबह से शाम तक टीवी पर, सब विद्वान सब तरह के, वहां शाम तक सुबह सुन लो, शाम तक बस उसके उपदेश का सिर्फ इतना सार है, ये मिलेगा आपको। जैसे मैं कहता हूं ना कि ये बम्बैया फिल्में बनती हैं, हर साल हजारों सैकड़ों बनती हैं और अभी तक तो लाखों बन चुकी हैं, उन सब की कहानी सिर्फ एक लाइन की कहानी है कि दो लड़के और एक लड़की, कि एक लड़का और दो लड़की, ऐसा समझे ना, बस इतनी सी कहानी है। ऐसी इन सारे लोगों के प्रवचनों का सार ये है। ये बात भी कितनी अत्यंत दुर्लभ है, देखो इस बात को सिद्ध करते हुए यह कह रहे हैं कि त्रयंच मनुष्य और देवों में सबसे अधिक सुखी देव माने जाते हैं। जब वे भी सुखी नहीं हैं, दुखी ही हैं, तो फिर त्रयंच और मनुष्यों की बात क्या करना, वे तो हमें दुखी दिखाई देते ही हैं। नारकियों की क्यों नहीं दिखी? एक तो नारकी दिखाई नहीं देते और दूसरे इन्हें ये नहीं की थी कि नरक की इस शुभ भाव से नरक मिलेगा, ये नहीं कहा था। क्या क्या कहा था? हाँ, तो वो कहा था बोलो, याद नहीं है? इतनी नित्य दिन में याद हो जाना चाहिए थी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। त्रिंज मान, इसलिए इन तीन की बात कर रहे हैं। वहां तो सुख है ही नहीं, मान वो ही नहीं मान रहे, वो विषय सुख वाला भी सुख नहीं है वहां तो। क्या अब इनमें जहां विषय सुख वाला सुख है उसके लिए ये सब बात कर रहे हैं। देवों को दुखी सिद्ध करने में सबसे बड़ी युक्ति यह है कि वे पंचेंद्रियों की उम्र दौड़ते देखे जाते हैं। भाई तुम देव दुखी हैं ये कैसे सिद्ध करते हो? कि पंचेंद्रिय विषयों की तरफ दौड़ते हैं, इससे हम ये सिद्ध करते हैं। उनमें रमते देखे जाते हैं। यदि वे दुखी नहीं हैं तो फिर विषयों में रमण क्यों करते हैं? क्योंकि विषयों की रमणता तो दुख दूर करने के लिए ही होती है। इस प्रकार यह सहज ही सिद्ध है कि नित्य विषयों में रमण करने वाले त्रयंच मनुष्य और देव दुखी ही हैं। त्रयंच मनुष्य और देव जिन्हें सुखी कहा था, इस शुभ उपयोग के वजह से जिन पदों को तुम प्राप्त करोगे उन पदों की ये हालत है। अब ये तो वे सारे प्रकरण में देव गति के प्रति अरुचि पैदा कर रहे हैं ना, कि रस पैदा कर रहे हैं। और अब देखो, मैंने कहा सब उसके जोग दिलाते हैं सबका, अभी अपने में से, अपने मुमुक्षुओं में से तुम क्या चाहते हो? तो वो जो पूछना, जो उत्तर जो देंगे वो तो देंगे, उत्तर देने वाले जाने, लेकिन पूछने वाले के दिल में क्या मतलब है? तुम कौन सा सुरक जाना चाहते हो? भवनवासी होना चाहते हो? बिंदर होना चाहते हो? देवी होना चाहते हो? देव होना चाहते हो? सर्वार सिद्धि जान, मतलब वो उनका वही उद्देश्य है कि तुम किसको चाहते, क्या सुख चाहते हो? तब तक कि जब तक वो मोक्ष का सुख नहीं मिले तब तक तुम कौन सा सुख चाहते हो? तो वो कहते मोक्ष के सुख के बिना कोई दूसरा सुख है, ये हमें आज तक समझ में ही नहीं आया। क्या हम उसमें से क्या तुम्हें चुन के बताएं कि हम क्या चाहते हैं? देखो है ना, फिर तो कल तुम ऐसे भी कह सकते हो कि तुम अच्छा जाना तो पड़ेगा नरक, राजा सोने गए तो तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा नरक भेजना है बोलो, कह सकते हैं? तो तुमको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हम उसको नरक में भी चुनाव करवा रहे? तुम तो यही कहोगे ना कि हम किसी भी नरक में नहीं जाना चाहते, और जाना पड़े तो ये कहेंगे मजबूरी में महात्मा गांधी जो होगा तो चले जाएंगे, जैसे राजा सेनेट चले गए, और जो भोगेंगे वो भोग लेंगे। क्यों? तो ऐसा ही देवगति के बारे में भी ऐसा ही विकल्प होना चाहिए। हमारे चिंतन के स्वरूप इधर किधर होना चाहिए, इसकी बात मैं आपसे कह रहा हूं। इस बात को मैंने अपनी किताब में लिखा ना, वो तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अभी? कौन सी किताब? कल लिखने वाली है? एक एक दफे तो पढ़ी ली होगी, तो उसने इस बात को बहुत दिया ना कि तुम क्यों किस किस क्या चुनाव करने की बात हमसे कह रहे हो, किसको चुनने की बात हमसे कह रहे हो, है ना। देवों को दुखी सिद्ध करने से तो हो गया है, विश्व में रमने वाले देव भी दुखी ही हैं। विगत गाथा में यह स्पष्ट हो जाने के ऊपर अब यह गाथा में यह कहते हैं कि जब पुण्योदय वाले देव भी दुखी ही हैं, ये बात सिद्ध हो गई ना, तो फिर पुण्य और पाप में क्या अंतर रहा। पुण्य की वजह से देव गति मिलेगी और वे भी दुखी हैं, पाप की वजह से नरक गति मिलेगी, वे भी दुखी हैं। तो दो ही दुखी हैं तो फिर पुण्य और पाप में अंतर ही क्या रहा है? तो पुण्य और पाप की एकता सिद्ध करने की विधि देखो क्या है। अब हमको क्यों नहीं समझ में आती है? इसलिए नहीं आती कि हमारे दिल में ये बात घुसी ही नहीं है कि देव भी दुखी है। देव का मतलब है देव मत समझो तुम। पांच इंद्रियों की विषय सामग्री जिनके पास उनकी इच्छानुसार भरपूर मौजूद है और उसके भोगने लायक शरीर मौजूद है, इसका नाम देव गति है, समझ लो। क्योंकि हमें इनका थोड़ा थोड़ा अनुभव है, देवों की तो पता नहीं है कि नहीं है, कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, वो तो शास्त्र में लिखी है ना, लेकिन इसका हमें अनुभव है ना। क्या थी? पांच इंद्रियों के भोग सामग्री और पांच इंद्रियों को भोगने की शक्ति, और तो एक तीसरा और है भोगने का भाव। एक पूजा आती है उसमें एक नैवेद्य का छंद है, उसमें से ऐसा ही अर्थ निकलता है गंभीर कि नेवज इंद्रिय बलकार सो तुम ने चूरा, चरु तुम ढिंग सो है सार, अचरज है पूरा। सुना होगा ना कभी? इतने शास्त्री वालों ने सुना होगा, अब उपाध्याय वाले आए उनने नहीं सुना होगा। सबने सुना हो तो फिर मैं आगे बढ़ू। नहीं सुना? सुना क्या? नहीं सुना हाथ उठाओ, जिनने नहीं सुना भी हाथ उठाए तो पता तो चले। हाँ, बहुत है। नहीं, जिनने नहीं सुना, देखो नेवज और चरु ये दोनों वो नैवेद्य नाम का जो द्रव्य है, आठ द्रव्यों में जल चंदन अक्षत पुष्प, फिर नैवेद्य आता है ना, फिर दीप। तो नैवेद्य नाम का जो द्रव्य है उसे नेवज कहते हैं और चरु भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि हे भगवान, नेवज इंद्रिय बलकार, नेवज है वो इंद्रियों को पुष्ट करने वाला है। नेवज माने होता है पूरी पकवान, लड्डू, ये होता है ना। विश्वंती लोग तो नेवज के नाम पे यही चढ़ाते हैं ना, अपन तो नारियल की चिकटक से काम चला लेते हैं है? तो वो जो नेवज माने बढ़िया बढ़िया खाद्य सामग्री, ये पांच इंद्रियों को बल देता है, तगड़ा करता है, मोटा ताजा बढ़िया मजबूत है। नेवज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा, सो भगवान तुमने उसे नष्ट कर दिया। और चरु तुम ढेंगे सो है सार, जब नेवज का तुमने नष्ट कर दिया तो चरु भी तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेवज माने चरु। जल नहीं है तो पानी भी नहीं होना चाहिए ना, जलो पानी एक अर्थवाची है। लेकिन चरु तुम ढेंगे सो है सार, फिर भी चरु तुम्हारे पास मौजूद है, ये अचरज है पूरा। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा है। इस पूजा की पंक्ति में यह है कि अचरज है पूरा, तो इसमें कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें अचरज की बात हो, इतना तो नक्की है ही ना। जब लिखा है कि अचरज है पूरा, मुझे आश्चर्य हो रहा है बहुत बहुत, तो होना चाहिए ना। तो कहते ये आश्चर्य की बात है कि नैवेद्य तो नष्ट कर दिया और चरु मौजूद है। अब नेवज माने क्या होता है? नेवज माने तुम्हारे बाहर की भोग सामग्री, मीठा मीठा नहीं। नेवज इंद्रिय बलकार, इससे अपने शरीर पुष्ट होता है ना, इसलिए अपने ऐसा बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कि शरीर पांच इंद्रियां हैं उन्हें इसे भोगने का भाव जब तक नहीं हो, राग भाव, तो इंद्रियां बेकार हैं, समझा। तुम्हें खाने की कोई इच्छा नहीं हो तो जवान कुछ मजा नहीं ले सकती है, समझ गया ना। तो कहते हैं तुम्हारे पास नेवज माने वो भोग का, पांच इंद्रियों से भोगने का भाव है, वो नेवज, वो है इंद्रिय बलकार। वो पांच जो इंद्रियां हैं उनको बल देती हैं, माने उनमें भोगने की प्रेरणा पैदा करती हैं। मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा ऐसा पांच इंद्रियों में भोगों का भाव आता है तो उनमें बल पैदा हो जाता है। तो नेवज इंद्रिय बलकार, सो तुमने चूरा, माने तुमने भोगने के भाव का अभाव कर दिया है। तुमने चूरा, नेवज का ऐसा अर्थ होना चाहिए ना जो भगवान ने नष्ट कर दिया हो। तो नेवज, नेवज का अर्थ लड्डू करेंगे तो लड्डू को भगवान ने क्या चूरा, देखा। सो तुमने चूरा, तो तुमने चूरा इस पे घटित होना चाहिए ना कि भगवान वो तुमने नष्ट कर दिया है। तो उस नेवज का अर्थ वो होना चाहिए जो भगवान ने नष्ट कर दिया है ना। तो इसलिए उसका अर्थ वो नहीं है लड्डू, उसका अर्थ है भोगने का भाव। अब जब नेवज को नष्ट कर दिया तो चरु नहीं होना चाहिए। तो चरु जानते आप किसे बोलते हैं, गोचरु। ये जो जंगल में गायें चरती हैं ना, वो जमीन होती है जहां गाय भैंस चरते हैं, माने खेती नहीं होती, वहां अनाज नहीं बोते हैं, वो गाय भैंस के लिए ही चरने के लिए जमीन छोड़ी जाती है। तो उसका टैक्स गाय वालों से म्युनिसिपैलिटी लेती है कि तुम्हारी गाय यहां चरेंगी तो एक गाय पे 5 रुपया महीना तुम्हें लगेगा। उस टैक्स को भी चरु बोलते हैं, चरु लगेगी तुम्हें, चरु लगेगी, चराई लगेगी, समझे ना। और फिर उसे बोलते गोचरु, माने गायें भैंसें जहां चरती हैं, चरती समझ गया, खाना खाती हैं, उस जमीन को बोलते हैं गोचरु भूमि। तो चरु का मतलब हो गया गोचर भूमि। और गो शब्द के 11 अर्थ होते हैं, तो एक अर्थ वाणी भी होता है, दिव्य ध्वनि भी होता है। तो गो चरु तुम्हें ढिंग जो है सार, फिर भी तुम्हारे पास दिव्य ध्वनि मौजूद है। हे भगवान, तुमने भोगने के भाव का तो अभाव कर दिया है, मैंने तुम्हें बोलने का भाव तो है नहीं, लेकिन वाणी तुम्हारी खिरती है। तो बोलने के भाव के बिना वाणी तो नहीं खिरती ना, वो खिर रही तुम्हारी। तो ये अचरज है पूरा, आश्चर्य की बात ये है। ऐसा नहीं पुरानी पूजन सब ऐसी ऐसी हैं, बहुत बहुत मार्मिक हैं, कई तो बहुत साहित्यिक हैं, बढ़िया से बढ़िया। आध्यात्मिक हो चाहे ना हो, लेकिन साहित्यिक तो हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारे जब भोग का भाव, तीन चीजें हो गई ना, अभी दो चीजें हो रही थी सामने, कौन कौन सी, भोग सामग्री, भोगने लायक मजबूत इंद्रियां, अब तीसरी चीज और आ गई भोग का भाव। अब ये तीनों का सुमेल बैठे तो भोगने की क्रिया संभव हो, और फिर उसमें सुख। तो फिर उसका वो अपने कल लगाया था ना कि जब से भूख लगी, भूख नहीं लगी तो खाने का मजा नहीं, फिर भूख लगी और 6 घंटे तक नहीं मिला तो 6 घंटे तक लगातार दुख, फिर खाना शुरू किया तो उस वक्त भी एक बदला फिर दुख ही दुख। तुम्हें सुख कहां, हमें तो सुख तो कहीं दिखाई दे दिया ही नहीं, फिर बाद में फिर दुख शुरू हो जाता है एकदम। तो कहते ये सारा दुख ही दुख है सब जगह, कि पुण्योदय वाले देव भी दुखी ही हैं, तो फिर पुण्य और पाप में अंतर क्या रहा। इसी प्रकार पुण्य और पाप के कारण है रूप, उसके कारण क्या है शुभ और अशुभ भाव, तो शुभ और अशुभ भावों में भी क्या अंतर रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, माने दोनों अशुद्धोपयोग हैं, समझ में आई ना। और फिर यही बात कहने लिखा ना, कोई अंतर नहीं है। फिर आगे वो आएगी कौन सी 77वीं का था कि जो न माने बात एक, इनमें अंतर नहीं है। अब अभी से 52-72 से समझाएंगे 76 तक इसी बात को, क्या कि इनमें कोई अंतर नहीं है। सब सब भावों में, पुण्य पाप भावों में कोई अंतर नहीं है, ये समझाएंगे। और फिर बाद में कहेंगे आया समझ में कि नहीं आया, कि जो न माने बात यह है, स्वभाव में अंतर नहीं है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात यह है, संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आता। माने ये प्रकरण चल रहा है, कौन सा अधिकार है? शुभ परिणाम है, उस शुभ परिणाम करो, देव पूजा करो। उनका तो पहले नाम लिया, उसके बाद तो बातें ही नहीं करते हैं, न दान की, न उनके भेद गिनाए, न कितनी प्रकार की पूजा होती है, कैसे करना चाहिए, खड़े खड़े करना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए, कि सामग्री से करना चाहिए, कोई बात ही नहीं करते हैं। क्यों है? दान की भी बात नहीं करते, वृद्ध उपवास की बात भी नहीं करते। और उन्होंने कहते वो शुभोपयोग है और उससे पुण्य बनता है और उससे पुण्य भोग सामग्री प्राप्त होती है, और ये देवों के सबके पास बढ़िया से बढ़िया होता है। वो वहां से शुरू कर दी। हम तो ये समझते थे कि ये जो शुभ परिणाम अधिकार का नाम लिखा ना, तो अब ये अब बताएंगे कि शुभ परिणाम किसे कहते हैं और शुभ परिणाम क्यों करना चाहिए और अच्छी तरह करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए, थोड़े बहुत तो करना ही चाहिए है, ऐसा कुछ समझाएंगे। लेकिन वो तो बात ही नहीं करते। कुंद 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 का देव कसन करने का तरीका, और निर्जरा अधिकार शुरू करते हैं तो निर्जरा तो 57 प्रकार की होती है ना, आश्रव भी 57 प्रकार के होते हैं ना। आश्रव अधिकार में 57 प्रकार के आश्रव के नाते हैं ना, निर्जरा अधिकार में 57 प्रकार की निर्जरा के नाते हैं। आश्रव जो भाव है वो शुभ भाव निर्जरा के हेतु है, भोग निर्जरा के हेतु बताते हैं है? मतलब इनकी हर चीज को कहने की एक अपनी अलग स्टाइल है, और कोई ग्रंथों का लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कोई भी चीज हमको लिखाना, अहिंसा लिखना है क्या ना, तो हम लिखेंगे कि जीवों का घात नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। फिर जीव कहाँ कहाँ होते हैं, तो एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में, नित्र में, निगोद में, आलू में, पालक में, हम इतनी जब जिसके जीव गिनाएंगे, लोक और लोक आकाश में ठसाठस भरे हुए हैं, जले जंतु सले जंतु हैं, जहाँ देखो जहाँ जंतु ही जंतु हैं, और तुम एक एक कदम चलते हो तो हजारों जीव मरते हैं और हमको नहीं मानना चाहिए, वो सारा अहिंसा वो समझाएंगे। और समय सारा अहिंसा समझाएगा तो क्या कहेगा, वो बात ही नहीं करता, कोई कोई किसी को मार ही नहीं सकता कोई किसी को जला ही नहीं सकता है? आज तक हमने एक भी जीव को मारा नहीं है, तो मारे ही नहीं सकते, मारना नहीं, ये बात आई कहाँ? आज से 1974 में उदयपुर विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हुआ था भगवान महावीर और उनकी अहिंसा पर, भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष था, उसमें 75 विद्वान इकट्ठे हुए थे वहां, इन उपाध्याय अगरचंद नहटा ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे। हम जयपुर से भी 3 लोग गए थे, तो वहां अहिंसा पर बात हुई तो सब तो वही तरह की अहिंसा की बातें करते थे, और मैंने वो जो अपनी सर्वोदय तीर्थ किताब है ना, उसमें जो अंत में परिशिष्ट में जो लेख दिया है मैंने, वो लेख पढ़ा था उसमें, तो उसमें ये सिद्ध किया है कि निज आयु छह से मरण हो यह बात दिन भर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते, कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता। तो मैंने इसमें एक वाक्य लिखा था शुरू शुरू में कि सब लोग कहते हैं मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात पर कोई आदमी सोचने को तैयार ही नहीं है कि हम किसी को मार सकते हैं कि नहीं। यदि हम मार ही नहीं सकते हो तो मारना नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब? तो ऐसा ऐसा देखते थे सब मेरी तरफ से। कोई अजायब घर से निकल के कोई चिड़िया घर से कोई आदमी आ गया, ऐसा देखते थे क्योंकि मैं तुम्हारी बराबर उम्र थी। सन 74 में कितनी होगी बोलो, कितने वर्ष का हूं मैं? सन 74 में 35 का मेरा जन्म है, लगाओ हिसाब। तो तब 39 वर्ष का था मैं, तो तब मरीज तो ऐसे देखते सब बुढ़े बुढ़े। ये अनुपाध्याय कितने उनके होंगे, 60-70 के, और ये सब मेरे पास सबके फोटो हैं। क्योंकि जब मैं पीएचडी हुआ था तो मैंने अपनी सारी किताब छपके गई थी, सबको भेंट की थी, तो उसे फोटो भी खींचे थे हैं? और तब मैं 55 किलो का था, अभी 75 किलो का हूं। समझ लो कैसा होऊंगा, उससे आप कल्पना कर सकते। 20 किलो घटाओ इसमें से है? इतना दुबला अभी तुम लोगों में से कोई नहीं है। समझे ना, बिल्कुल लंबा लंबा पतला पतला, उस फोटो में है वो, जो एन उपाध्याय के साथ मेरे फोटो हैं, आगे चंद नहटा के साथ फोटो हैं उनमें। तो मेरे से कही क्या बात, क्या क्या बात करते हो? मैं कहा देखो ये समय सार की गाथाएं हैं। एक थे महावीर राज गेलरा, वो विद्वान थे श्वेतांबरों के, इनके थे आचार्य तुलसी वालों के। तो वे आए मेरे पास कि तुम तेरापंथी हो? मैंने कहा हाँ तेरापंथी है। उन्हें क्या पता वे श्वेतांबर तेरापंथी थे, मैं दिगंबर तेरापंथी था। बोले हमारे तेरापंथियों के यहां है ये बात, तो उनके यहां भी ऐसी बात होगी चर्चा क्या? लेकिन वो तो बड़ी उल्टी बात है, जैसे हम चल रहे हैं जी मर रहे हैं, मरते ही नहीं है, ऐसी की चर्चा आई होगी। तो ये तो बात हमारी है, तो लोग कहें ये तो तेरापंथी है, उनमें से लाए। अरे कुंद आचार्य तेरापंथियों के हैं? जब कुंद आचार्य हुए, जब तो तेरापंथ का जन्म ही नहीं हुआ था, न दिगंबर तेरापंथ का, न श्वेतांबर तेरापंथ का। ये तो मूल कुंद की गाथाएं हैं, कोई उनसे परिचित नहीं था, और था तो किसी के ध्यान में नहीं थी। ये अनुपाध्याय तो वो थे कि जिनसे सोनगढ़ वालों ने भी समय सार की गाथाएं शुद्ध कराई थी, अशुद्ध ना रह जाए सपने में। और प्रवचन सार की इतनी बड़ी प्रस्तावना अंग्रेजी में लिखी है, लेकिन उनको भी किसी को ख्याल नहीं था। प्रस्तावना लिख दी होगी, जब लिखी होगी तब ये गाथाएं पढ़ दी, शुद्ध कर दी होंगी तो कर दी होंगी, व्याकरण देख दाख करके। उनका क्या अर्थ है उसके ख्याल में नहीं था, सबको आश्चर्य होता था कि सचमुच जैन धर्म में है। मैं कहता देखो इस पे कोई विचार करने को तैयार नहीं, ऐसे ही ये कहते हैं कि देवों के सुख को कौन सी गति में सुख चाहिए, कैसा सुख चाहिए, कितना सुख है, तुम इतना वर्णन करवा लो। अभी ये सब पे लेख देवगति के सुख एक लेख लिखाओ तो इतनी बड़ी पोथन न हो जाए है? और ये लिखाओ कि देवगति में सुख, इंद्रों के दुखों का वर्णन करो, चक्रवर्ती के दुखों का वर्णन करो, एक ऐसा लेख लिखवाओ सारे हिंदुस्तान वालों को, 1,000-1,00,000 रुपए का पुरस्कार घोषित करो, और ये लेख लिखाओ क्या कि चक्रवर्ती के दुखों का वर्णन है, वो 5 पेज से अधिक में नहीं होना चाहिए है? कोई नहीं लिख सकता कि क्या स्थिति है समाज की है? जैन धर्म के बारे में हम कहां तक पहुंच गए हैं, ये बहुत गंभीरता से हमें सोचने की जरूरत है, और वो सारी जिम्मेवारी हम पर है। अब हमें मालूम पड़ गया ना, अब 700 लोगों को मालूम पड़ गया ना, और 150-200, तुम तो 900 लोगों को मालूम पड़ गया ना, तो 900 लोगों की जिम्मेवारी है कि सारे समाज को ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये बात जैन धर्म में है। हम तो क्या बताते, एक अकेले कितना बताते, किसको बताते, कौन क्या बताते, क्यों? हमने उस दीपक को टिमटिमाता हुआ रखा, बुझने नहीं दुआ, तो दीपक की लौ बड़ी की जा सकती है, और एक दीपक से कई दीपक जलाए जा सकते हैं, यदि वो बुझ जाता तो काम खत्म था। तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, समाज के बच्चे बच्चे एक एक गांव की महिलाओं को, अब तो महिलाएं भी पढ़ी लिखी हो गई, सबको ये पता होना चाहिए असली जैन धर्म ये है, ये बंधनकारी की गाथाएं हैं, असली अहिंसा का स्वरूप ये है।